अल्लाह के खास बंदे।
प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम अल्लाह के खास बंदे की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं जहरा जैदी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे।
प्रिय श्रोताओं, इस्लाम के सच्चे मार्गदर्शक और अल्लाह के खास बंदों की जीवन शैली बयान करने से हमारा उद्देश्य ये था कि आपको उनके जीवन के उतार चढ़ाव से परिचित कराएं और साथ ही आपको उन शैलियों से अवगत कराएं जो उन्होंने अपनाई थीं। इसी तरह उनके जीवन के उतार चढ़ाव बयान करने से हमारा उद्देश्य ये था कि हम उन्हें अपना आदर्श बनाएं ताकि ईश्वर के सीधे रास्ते पर चलें और गुमराह होने से बचें। उदाहरण के तौर पर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपने समय के क्रूर व अत्याचारी शासक मुतवक्किल के मुकाबले में जो स्पष्ट व पारदर्शी नीति अपनाई थी उससे हम सीख सकते हैं। मुतवक्किल वो अत्याचारी शासक था जिसने अपने समय में पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के संबंध में बहुत अधिक शत्रुतापूर्ण नीति अपना रखी थी। वो बहुत शराब पीता था। वो शराब और सत्ता के नशे में इतना चूर था कि उसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से भी शराब पीने के लिए कहा। इमाम ने बड़ी दृढ़ता के साथ उसे रद्द कर दिया। उसके बाद उसने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से शेर पढ़ने के लिए कहा। इमाम ने जो शेर पढ़ा वो इस बात का सूचक था कि शीघ्र ही उसकी खोखली सत्ता का अंत हो जाएगा।
इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की सबसे प्रसिद्ध उपाधि हादी थी। इमाम के दृष्टिकोण व पावन जीवन शैली से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सत्ता में धोखे में नहीं आना चाहिए। साथ ही हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर की इच्छा से कुछ ही दिनों व समय में सत्ता का अंत हो जाता है और बाद में सत्ता की केवल बुरी यादें रह जाती हैं। पवित्र कुरान की विभिन्न आयतों में तानाशाहों और अत्याचारी शासकों के इतिहास और उनके अंत की ओर संकेत किया गया है। सूरह शुअरा की 227वीं आयत में महान ईश्वर कहता है, जिन्होंने अत्याचार किया शीघ्र ही उन्हें पता चल जाएगा कि उनका क्या अंत होगा। इसी तरह महान ईश्वर पवित्र कुरान की दूसरी आयत में कहता है, जमीन में चलो फिरो और देखो कि जिन्होंने अत्याचार किया और मेरी आयतों व निशानियों को झुठलाया उनका अंजाम क्या हुआ।
इसी आधार पर ईश्वर के सच्चे व अच्छे बंदों ने अत्याचारी सरकारों के प्रति न तो लेश मात्र रुचि दिखाई और न ही भयभीत हुए और कठिन से कठिन स्थिति में भी ईश्वरीय दायित्व का निर्वाह किया और समस्त चुनौतियों को अवसर में बदला। इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने समस्त कठिनाइयों, दबावों और सीमाओं के बावजूद इस्लाम की विशुद्ध शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से शिष्यों का प्रशिक्षण किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इमाम ने लगभग 185 शिष्यों का प्रशिक्षण किया जिनमें से हम कुछ की समीक्षा करने जा रहे हैं।
इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जिन शिष्यों का प्रशिक्षण किया उनमें से एक हज़रत अब्दुल अजीम हसनी हैं जो बहुत बड़े विद्वान थे और उनका बहुत ऊंचा स्थान है। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कुछ शिष्य ऐसे थे जिन्हें आठवें इमाम अर्थात हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज्ञान से भी लाभ उठाने का अवसर प्राप्त था और उनकी गणना नवें और दसवें इमाम के शिष्यों में होती है। अबू जमात राजीन नामक इमाम के शिष्य कहते हैं, मैं इमाम हादी अलैहिस्सलाम की सेवा में पहुंचा और मैंने उनसे वो बातें पूछीं जो नहीं जानता था। इमाम ने उन सब का उत्तर दिया। उसके बाद जब मैंने इमाम से विदा लेना चाही तो इमाम ने कहा, जब भी तुम्हें कोई चीज़ पूछनी हो तो अब्दुल अजीम हसनी से पूछा करो और मेरा सलाम भी उन्हें कह देना।
शिया धर्म के एक साहित्यकार व शायर साहिब बिन इबाद भी लिखते हैं कि अब्दुल अजीम हसनी धार्मिक मामलों में जानकार और धार्मिक विषयों एवं कुरान के आदेशों से पूर्ण रूप से अवगत थे। वास्तविकता यह है कि अब्दुल अजीम हसनी ईमान व ज्ञान में उस स्थान पर पहुँचे थे कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया था, तुम हमारे सच्चे मित्रों में से हो।
अब्दुल अजीम हसनी का जो विश्वास था उसके सही होने के प्रति संतोष प्राप्त करने के लिए वो इमाम हादी अलैहिस्सलाम की सेवा में उपस्थित हुए और उनका जो विश्वास था उसे इमाम के सामने बयान किया और उसके बाद उन्होंने एक एक इमाम का नाम लिया और कहा कि मैं सब पर ईमान रखता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ कि जो उनका दोस्त होगा वो ईश्वर का दोस्त होगा और जो उनका दुश्मन होगा वो ईश्वर का भी दुश्मन होगा और उनका अनुपालन ईश्वर का अनुपालन होगा और उनकी अवज्ञा ईश्वर की अवज्ञा होगी। इसी तरह उन्होंने अपनी बात जारी रखी और कहा कि मैं पैगंबर इस्लाम की मेराज पर ईमान रखता हूँ, मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि कब्र में सवाल व जवाब किया जाएगा, स्वर्ग व नरक हैं, पुल सिरात है, प्रलय है, हिसाब किताब है और इन चीज़ों में किसी प्रकार का संदेह नहीं है और ईश्वर समस्त मुर्दों को जीवित करेगा ताकि उनका हिसाब किताब किया जाए। इन समस्त बातों को सुनने के बाद इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अबुल कासिम, ईश्वर की सौगंध यही वो धर्म है जिसे ईश्वर ने अपने बंधुओं के लिए पसंद किया है, उस पर बने रहो ताकि जिन चीज़ों का तुमने नाम लिया है ईश्वर लोक पर लोक में उस पर तुम्हें कायम रखे।
इमाम हादी अलैहिस्सलाम के ज्ञान के अथाह सागर से लाभ उठाने वाले एक हुसैन बिन सईद अहवाजी हैं। उन्होंने इमाम रज़ा और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से भी ज्ञान अर्जित किया था और तीनों इमामों के हवाले से वे उन हदीसों को बयान करते थे जिनमें इस्लाम की विशुद्ध शिक्षाएं होती थीं। हुसैन बिन सईद अहवाजी ने धर्मशास्त्र और नैतिक विषयों के बारे में 30 पुस्तकें यादगार के रूप में छोड़ी हैं और प्रसिद्ध धर्म गुरुओं एवं विद्वानों ने पुष्टि की है और लिखा है कि वे महान एवं विश्वसनीय विद्वान थे। इस्लामी जगत के एक प्रसिद्ध विद्वान शेख तूसी लिखते हैं, हुसैन बिन सईद एक महान शैक्षिक हस्ती होने के अतिरिक्त लोगों यहाँ तक कि जानी मानी हस्तियों के मार्गदर्शन में ध्यान योग्य भूमिका रखते थे और उन्होंने इन लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जिसकी वजह से ये लोग इस्लाम की महान हस्ती बने।
इमाम हादी अलैहिस्सलाम के ज्ञान से लाभ उठाने वालों में फजल बिन शाजान नेशापुरी भी हैं। वो अपने समय के महान धर्मशास्त्री और दक्ष मुतकल्लिम अर्थात आस्था के संबंध में महान विद्वान थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। जो किताबें उन्होंने लिखी हैं उनकी संख्या 180 बताई जाती है। उनकी एक किताब का नाम अल ईज़ाह है। ये किताब इल्म कलाम अर्थात धार्मिक आस्था और हदीस बयान करने वाले रावियों की आस्था के बारे में है। फजल बिन शाजान नेशापुरी की किताबों से विद्वानों और धर्मगुरुओं ने लाभ उठाया है और हदीस स्वीकार करने या न करने के लिए रावी उन्हें मापदंड करार देते थे। शेख कुलैनी, शेख सदूक और शेख तूसी जैसी इल्मी जगत की जानी मानी हस्तियाँ अपनी रचनाओं में उनके कथनों एवं दृष्टिकोणों पर ध्यान देती थीं। जामियतुर रवाह नामक पुस्तक के लेखक मोहम्मद बिन अली अर्दबीली फजल बिन शाजान नेशापुरी के बारे में लिखते हैं कि वो हमशियों के प्रमुख और महान हस्ती हैं और इससे महत्वपूर्ण ये है कि हम उनके बारे में बातें करें। उनकी किताबों पर पुष्टि की मुहर इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने लगाई है। कहा जाता है कि जब फजल बिन शाजान नेशापुरी की अल यौम व लैला नामक पुस्तक 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई तो उन्होंने फजल बिन शाजान नेशापुरी पर 3 बार दुरूद भेजा और फरमाया, वो शिक्षा और व्यवहार में आदर्श के लायक हैं।
श्रोताओं, आपको याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि इस्लाम की विशुद्ध शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए इस्लामी मार्गदर्शकों की एक शैली तत्वदर्शी पथ प्रदर्शन था और इस मार्ग से वे समस्त क्षेत्रों में इस्लाम की विशुद्ध शिक्षाओं एवं अपने दृष्टिकोणों को बयान करते और समाज की दिशा निर्धारित करते थे। इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने भी इसी शैली को अपनाते हुए महत्वपूर्ण बातें पेश की। उदाहरण के तौर पर एकेश्वरवाद के संबंध में इमाम हादी अलैहिस्सलाम के मूल्यवान कथन हैं। इमाम फरमाते हैं, जो ईश्वर से डरे लोग उससे डरेंगे, और जो ईश्वर का अनुपालन करेगा लोग उसका अनुपालन करेंगे, और जो ब्रह्मांड के रचयिता का अनुपालन करेगा वो लोगों के क्रोध से नहीं डरेगा, और जो ईश्वर को क्रोधित करेगा निसंदेह वो लोगों के क्रोध का पात्र बनेगा।
अतः महान ईश्वर के सिद्धांतों पर कटिबद्ध रहने का प्रतिफल स्वयं मनुष्य को मिलता है। जैसा कि दसवें इमाम हादी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ईश्वरीय सीमा की सुरक्षा, उसकी अवज्ञा से डरना या ब्रह्मांड के रचयिता के आदेशों के अनुपालन की भावना इस बात का कारण बनती है कि दूसरे हमारा सम्मान करें और हमारे आदेशों का पालन करें। और चूंकि हमने ईश्वर की प्रसन्नता के मार्ग में कदम बढ़ाया है, इसलिए हम न केवल दूसरों के क्रोध और घृणा के पात्र नहीं बने हैं, बल्कि दूसरे हमसे प्रेम करते हैं।
एक बार जब इमाम हादी अलैहिस्सलाम और अत्याचारी शासक मुतवक्किल के बीच कुछ बहस हो गई तो इमाम ने फरमाया, जिसके प्रति तेरे दिल में द्वेष है उससे मित्रता की अपेक्षा मत रख, और जिसके साथ तूने विश्वासघात किया है, वचन तोड़ा है, उससे वफादारी की उम्मीद मत रख, और जिसके संबंध में तू बुरा विचार रखता है उसके हितैषी होने और उससे शुभ चिंता की अपेक्षा मत रख, क्योंकि तेरे प्रति दूसरों की दिल की हालत वही है जो दूसरों के प्रति तेरे दिल की हालत है।
यद्यपि इमाम का ये नैतिक मार्गदर्शन सार्वजनिक है, परंतु समय के तानाशाह मुतवक्किल अब्बासी के सामने पारदर्शी और ठोस जवाब है, और इमाम उसे ये समझाना चाहते थे कि तेरे दिल में मेरे प्रति द्वेष है, तूने वचन को तोड़ा है, तेरे दिल में भ्रांति है, इस प्रकार की स्थिति में तू किस प्रकार ये अपेक्षा रखता है कि मैं तुझसे प्रेम करूं, जबकि तूने वचन को तोड़ दिया है और द्वेष के कारण सदैव मेरे खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है। इसी तरह इमाम जब समस्त इंसानों के जीवन के अंत का चित्रण करते हैं तो कहते हैं, उस समय को याद कर जब तू अपने परिजनों, दोस्तों और निकट संबंधियों के सामने मौत के बिस्तर पर पड़ा होगा, वैद्य भी तेरा उपचार नहीं कर सकेंगे और कोई दूसरा भी तुझे मौत के चंगुल से मुक्ति नहीं दिला सकेगा। इस आधार पर जो चीज़ इंसान के लिए लाभदायक होगी और वो इंसान का साथ नहीं छोड़ेगी, वो इंसान का कर्म है। मौत के समय न ताकत और न पैसे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, और मौत के बाद इंसान के कर्मों के अतिरिक्त कोई भी उसका साथ नहीं देगा। और इमाम हादी अलैहिस्सलाम दुनिया के जीवन का बड़ा अच्छा चित्रण करते हुए कहते हैं, दुनिया बाजार और व्यापार की जगह है कि कुछ लोग उसमें फ़ायदा करते हैं और कुछ लोग घाटा उठाते हैं। जैसा कि ईश्वर सूरह असर में कहता है, ज़माने की कसम, निसंदेह इंसान घाटे में है, किंतु वे लोग जो ईमान लाए और अच्छा कर्म अंजाम देते रहे और एक दूसरे को सत्य और धैर्य की सिफारिश करते रहे।